दिन भर 13 मार्च सोमवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का इस्तीफा, कल गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, कांग्रेस ने दी लोकतंत्र की दुहाई।
हमारे पीठ में इन्होंने छुरा फूंक दिया है और बिट्रे किया है, तो भारतीय संविधान का खून किया है।
मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी ने किया सरकार बनाने का दावा पेश, राजभवन में मंत्रणा जारी। न्यूयॉर्क में गैर कानूनी भारतीय मजदूरों को बकाया वेतन के रूप में मिल रही है लाखों डॉलर की रकम।
$60-$50 आवर के हिसाब से देना चाहिए था, पर डे हम 8 आवर काम करते थे, मोर देन $300।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में नई सरकार का गठन होगा। मनोहर पर्रिकर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनोहर पर्रिकर ने रविवार को गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मुलाकात कर 21 विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था। बीजेपी को 40 सदस्यीय विधानसभा में 13 सीटें मिली हैं। वहीं 17 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस के विधायक विश्वजीत राणे ने बीबीसी से कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था। राणे ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता सही समय पर सही फैसला नहीं कर सके। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कहा है कि वो यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी के लिए नए सिरे से जनमत संग्रह कराने के पक्ष में है। उनका बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि ब्रिटेन की संसद में यूरोपीय यूनियन से अलग होने की प्रक्रिया से जुड़े बिल पर मतदान होने वाला है। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के फैसले को मंजूर कर लिया, लेकिन ये बात मंजूर नहीं की है कि वो यूरोप के एकल बाजार से भी अलग हो जाएगा। सोमालिया की पुलिस के मुताबिक राजधानी मोगादिशु में एक होटल के पास हुए कार बम धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय अधिकारी अहमद दुबाद ने बताया, ये जोरदार धमाका था, मासूम लोगों की मौत हो गई। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में मातम छा गया, हर तरफ लोगों के शव और घायल ही नजर आ रहे थे। ये थे सोमालिया के स्थानीय अधिकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि उनके और विरोधियों के बीच बनी सहमति के बाद होम शहर से विद्रोही लड़ाकों को बाहर आने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये समझा जा रहा है कि समझौते के तहत जो चरमपंथी विद्रोहियों के इलाके से बाहर जाना चाहेंगे उन्हें उनके परिवार के साथ जाने की अनुमति होगी। वो उत्तरी सीरिया के उन हिस्सों में जा सकेंगे जो विद्रोहियों के अधिकार में है। इस बीच सीरिया के विपक्षी गुट के प्रवक्ता ने कहा है कि वो मंगलवार से कजाकिस्तान में शुरू हो रही बातचीत में हिस्सा नहीं लेंगे। उत्तर कोरिया ने जनेवा में संयुक्त राष्ट्र की ओर से की जा रही मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा का बहिष्कार कर दिया है। उत्तर कोरिया के एक प्रतिनिधि ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 3 बरस पहले जारी रिपोर्ट में उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। उत्तर कोरिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि थॉमस ओके केंटीना ने कहा, मैं कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हूं। इसकी शुरुआत जनवरी 2016 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओर से परमाणु और मिसाइल परीक्षण के साथ हुई। बीते हफ्ते जापान सागर में मिसाइल परीक्षण की रिपोर्टें आई। इन गतिविधियों ने मानवाधिकार को लेकर सहयोग और बातचीत से जुड़ी सीमित संभावनाओं को संकट में डाल दिया है। ये थे थॉमस ओके किंटाना के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी ने कामकाज संभाल लिया है। वो बीमार होने की वजह से लंबी छुट्टी पर थे। उन्होंने इलाज के लिए करीब 2 महीने का वक्त लंदन में बिताया था। उनकी बीमारी से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। उनकी अनुपस्थिति में येमी ओशियन बायो देश की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और एटीएम से धन निकालने से जुड़ी सभी पाबंदियां हटा ली हैं। नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था, उसके बाद धन निकालने की सीमा तय की गई थी। भारतीय जनता पार्टी नोटबंदी के फैसले को उत्तर प्रदेश में मिली जीत की बड़ी वजह बता रही है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। भारत में आज होली की धूम है, लेकिन सियासत का पारा भी नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। खासतौर से गोवा और मणिपुर में राजनीति उफान पर है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, जिसका नेतृत्व मनोहर पर्रिकर करेंगे। उन्हें कल शाम शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने पर्रिकर को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वित्त मंत्री अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोवा की सियासत का ताजा हाल सुनिए बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
गोवा विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर आने वाली भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में मंगलवार की शाम को सरकार बनाने जा रही है। पर्रिकर और मंत्रिमंडल के सदस्य कल शाम शपथ लेंगे। मनोहर पर्रिकर पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं 2.5 साल के बाद वापस लौट रहा हूं। मैं राज्य की जनता और अपने साथियों से एक वादा करता हूं कि हमें जनता का मत मिला है। हमें बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी पार्टियों की मदद से हमने 21 का मैजिकल नंबर हासिल कर लिया है। ये थे शब्द मनोहर पर्रिकर के, जिन्होंने रक्षा मंत्री के पद से अब से कुछ समय पहले इस्तीफा दे दिया है। जिस मैजिकल नंबर की वो बात कर रहे थे, वो गोवा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए अनिवार्य है। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 18 और भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें हासिल हुई थीं। बाकी बची सीटें छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों के नाम गई थीं। सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस पार्टी अब तक के डेवलपमेंट से काफी नाराज है। गोवा से पार्टी के सांसद शांताराम नाइक कहते हैं,
हमारे पीठ में इन्होंने छुरा भोंक दिया है और बिट्रे किया है, भारतीय संविधान का खून किया है।
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा कि जो पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, उसे सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा करने में देरी कर दी। गोवा से भाजपा के सांसद नरेंद्र केशव स्वैकर कहते हैं कि गोवा की छोटी पार्टियों ने उनकी पार्टी को खुद ही समर्थन देने का फैसला किया।
हमने तो किसी से नहीं मांगा था सपोर्ट के लिए, तो बाकी सब लोग आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 13 है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग आए। उन जो पार्टीज है, इंडिपेंडेंट्स है, उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी लेड मनोहर पर्रिकर जी के नेतृत्व में सरकार बनाए हम गोवा में, उसके कारण तो हमारी गवर्नमेंट बन सकती है।
कांग्रेस पार्टी के सांसद शांताराम नाइक ने जहां ये स्वीकार किया कि सरकार बनाने में उनकी पार्टी से देरी हुई, वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र है और विधायकों के नेता के चुने जाने में थोड़ा समय लग गया। तो क्या अब कांग्रेस के पास कोई और विकल्प है? शांताराम नायक कहते हैं,
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनकी जो एटीट्यूड है मिस्टर पर्रिकर की, उस हिसाब से वो 2-3 महीने के बाद सरकार नहीं चला पाएंगे ऐसा लगता है हमको। हम उन्हें गोवा में 4-5 साल बहुत अनुभव किया है, हम उसको छोटा मोदी बोलते थे।
उन्होंने मनोहर पर्रिकर पर प्रहार करते हुए कहा कि वो रक्षा मंत्री की हैसियत से नाकाम रहे हैं, इसलिए वो गोवा वापस लौट रहे हैं।
डिफेंस मिनिस्टर के पद से एक छोटे राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने क्यों प्रेफर कर दिया? उनको लगा कि वो तो डिफेंस मिनिस्टर में उसका रोल ही नहीं है, वो अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सब कुछ चलाता है।
क्या रक्षा मंत्री के पद को त्याग देकर छोटे से राज्य गोवा में एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालना मनोहर पर्रिकर की छवि के लिए सही है? गोवा से ही भाजपा के सांसद श्रीपद नायक इस सवाल का जवाब यूं देते हैं,
ये क्या है, तो उनको जरा पूछिए आप। मैं क्या कर सकता हूं?
आप कुछ तो राय होगी आप?
नहीं नहीं, ये तो ये उनकी मर्जी है ना।
भाजपा के सांसदों ने ये स्वीकार किया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। श्रीपद नायक के अनुसार पार्टी के हारे हुए विधायकों को जनता ने रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं, हमें इससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनके विचार में उनकी पार्टी के पास 21 विधायकों का मैजिकल नंबर है और इसीलिए वो सरकार बना रही है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
ये तो हुआ गोवा का हाल। उधर मणिपुर में भी चुनावी नतीजे आने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री इकराम इबोबी सिंह ने इस्तीफा देने से पहले सरकार बनाने के लिए दावेदारी पेश कर दी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है और सरकार बनाने का न्यौता मांगा है। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला का कहना है कि उन्हें तो अभी चुनाव आयोग से नतीजों की अधिसूचना ही हासिल नहीं हुई है। तो ऐसे में फिलहाल वहां क्या हो रहा है, सुनिए सलमान रावी से।
पार्टी प्रेसिडेंट विद अ लेटर टू क्लेम दैट ही शुड बी कॉल्ड Because he's the single largest party.
यह है मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जो एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं।
NPP signed by two people, secretary and the president. And when I saw the letter, I told him.
नजमा हेपतुल्ला कह रही थी कि कांग्रेस ने सबसे बड़े दल के रूप में सरकार बनाने का दावा जरूर पेश किया है। उनका कहना है कि अपने विधायकों की सूची के साथ साथ कांग्रेस ने नेशनल पीपल्स पार्टी के दो विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी दी है।
Because the president of the party had already given me the letter an hour ago when he came with the letter of four MLAs signed from his party pledging support to the BJP led government.
नजमा हेपतुल्ला का कहना है कि कांग्रेस ने एनपीपी के दो सदस्यों के समर्थन की चिट्ठी दी तो है मगर उनके साथ नेशनल पीपल्स पार्टी का कोई नहीं आया। हेपतुल्ला कह रही थी कि जिनकी चिट्ठी वो दिखा रहे हैं वो कुछ देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ व्यक्तिगत तौर पर आकर उनसे मिले और अपने समर्थन की चिट्ठी भी दी। अब जबकि गेंद राज्यपाल के पाले में है, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने का मौका खोती नजर आ रही है। 60 सदस्यों वाली मणिपुर की विधानसभा में कांग्रेस ने 28 सीटें हासिल की हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी 21 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। सरकार बनाने को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भावानंद सिंह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उनके पास कुल मिलाकर 32 विधायकों का समर्थन है।
क्लेम किया जो गवर्नर हैजंट सेड एनीथिंग, वी आर वेटिंग फॉर हर टू कॉल अस, देखते हैं क्या होता है। वी आर नाउ 32, वी हैव क्रॉस 32।
कहा जाता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। आप तो
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 28, इवन इफ द कांग्रेस हैज गॉट, ही इज नॉट गेटिंग एनी बिकॉज़ ही इज लोन। 28 इज अलोन, वी हैव गॉट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम ऑल द स्मॉलर ग्रुप्स, सो ही इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। द कांग्रेस इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सो हाउ विल ही फॉर्म द गवर्नमेंट।
वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो गलत है क्योंकि कांग्रेस अकेला सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जो बहुमत से सिर्फ 3 सीटें ही कम है। बीबीसी से बात करते हुए कांग्रेस के मणिपुर के महासचिव विक्टर के सिंह ने कहा,
बीजेपी ने क्लेम किया है, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने भी क्लेम किया है। अभी सब गवर्नर के पास, गवर्नर डिसाइड करना है। एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी हैज अ राइट आल्सो टू क्लेम, एंड कांग्रेस पार्टी राइट नाउ इज वेरी क्लोज आल्सो। 31 चाहिए, कांग्रेस पार्टी का 28 है, गवर्नर सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए।
इम्फाल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप पंजोबामा कहते हैं कि सरकार बनाने के दावों के बावजूद सब कुछ अभी तक साफ नहीं हो पाया है क्योंकि कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी है।
कांग्रेस का 28 है, उसको चाहिए 3 और MLA, लेकिन वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से लेगा, इसका क्वेश्चन है। और बीजेपी का एडवांटेज है वो पार्टी इन पावर एट द सेंटर, इसी क्लाउड से उसने वो सब MLA इंडिपेंडेंट और छोटा छोटा पार्टी का वो सब उसका लॉयल्टी उसने ले गया है, लगता है ऐसा। इसीलिए अभी कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा।
बहरहाल मणिपुर की राज्यपाल इस मामले में संविधान के विशेषज्ञों की सलाह ले रही हैं और सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सरकार बनाने के लिए किसको न्योता दिया जाए इस पर फैसला हो जाएगा। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
गोवा और मणिपुर के सियासी घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका अहम हो गई है। दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार के नियुक्त किए राज्यपाल हैं। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है। आखिर दोनों राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो कांग्रेस उभरी है, तो फिर सत्ता पर पहली दावेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भारत का संविधान राज्यपाल की भूमिका के बारे में क्या कहता है, यही सवाल मैंने किया पूर्व गृह सचिव और सिक्किम के राज्यपाल रह चुके बीपी सिंह से, तो उनका जवाब था।
देखिए, संविधान का नियम है कि इलेक्शन के बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो रिजिग्नेशन अपना राज्यपाल को सौंप, और राज्यपाल का दायित्व है कि उनको एक पत्र दे कि आप तब तक बने रहें पद पर जब तक कि दूसरा व्यक्ति बहाल नहीं होता है चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और आर्टिकल 164 में ये गवर्नर का दायित्व तो है, उनकी ड्यूटी है कि वो चीफ मिनिस्टर बहाल करें। तो होता ऐसा है कि कोई न कोई उनके पास आता है। अगर मेजोरिटी है किसी को तब तो कोई सवाल नहीं है, मेजोरिटी नहीं है तो एक व्यक्ति आएगा जो कहेगा कि हमको इस पार्टी ने लीडर बनाया है और ये लोग हमको सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर गवर्नर सेटिस्फाइड हैं कि उनके साथ जो लोग आ रहे हैं उन्होंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पार्टी का या व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट दिया है और वो मेजोरिटी बन जाती है तो गवर्नर उनको खत दे सकते हैं। और मान लीजिए दो आ जाएं, दोनों पार्टी के लीडर आ जाएं अलग अलग, तो दोनों से मांगेंगे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एक व्यक्ति दोनों को हाँ कह दिया है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी कभी कभी दे दिया है, तब गवर्नर साहब का दायित्व तो है कि उस व्यक्ति को बुला के पूछें कि आप कहाँ हैं, किनके साथ हैं, या उस व्यक्ति को कहें कि आप उनको लेके आइए। उनको सेटिस्फाई होना है कि मेजोरिटी किसकी है।
ये जो कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको पहला मौका मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या संविधान कहता है?
मौका की बात नहीं है, आपके पास जब व्यक्ति आ जाएगा, अगर दो व्यक्ति आए सबसे बड़ी पार्टी का आए उनके पास मेजोरिटी नहीं है तब तो उनको देने का कोई हक नहीं है, तब दूसरे को बुलाना चाहिए कि अगर आपको मेजोरिटी है तो आप आइए। लेकिन अगर पहले बार जो आदमी आया उसने मेजोरिटी प्रूफ कर दिया तब तो, या पहला नहीं प्रूफ किया दूसरा जो आया वो प्रूफ कर दिया, तो जो मेजोरिटी गवर्नर के ओपिनियन में प्रूफ कर देता है तो उसको दे दिया जाता है। फिर उसको एक अवधि में 7 दिन 10 दिन 3 दिन 15 दिन में उसको अपनी मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्रूफ कर दिया।
मतलब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी को पहले बुलाया जाएगा?
जी नहीं, वो नहीं बुलाते हैं ना, अभी तो इलेक्शन के बाद लोग खुद जाते हैं। अगर दोनों लोग या तीन लोग के पास मेजोरिटी नहीं हो तभी वो समस्या होती है, 1 2 3। अब यहाँ तो ऐसा हुआ ना कि एक व्यक्ति गया, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी है लेकिन वो उनके पास लिस्ट है कि हमारे पास मेजोरिटी के लिस्ट है, उनके दस्तखत हैं, पार्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उसमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
गोवा और मणिपुर की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है, संविधान क्या कहता है, ये बता रहे थे सिक्किम के पूर्व राज्यपाल बीपी सिंह।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। और आइए अब रुख करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां गैर कानूनी रूप से काम करने वाले कुछ भारतीय मजदूरों को बड़ा फायदा हुआ है। न्यूयॉर्क प्रशासन की ओर से गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले कई भारतीय मजदूरों को लाखों डॉलर का बकाया पगार के रूप में मिलना शुरू हो गया है। इन मजदूरों ने कई वर्षों तक ठेकेदारों के तहत गैर कानूनी तरीके से काम किया, उन्हें कम पगार दी गई और अब उन्हें उनका बकाई, जो उनकी बकाया रकम है वो वापस की जा रही है। क्या है पूरा मामला, सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की इस रिपोर्ट में।
भारत के हरियाणा राज्य से न्यूयॉर्क आकर करनैल सिंह पिछले कई वर्षों से मजदूरी का काम करते रहे हैं, लेकिन उनका ठेकेदार उनको वाजिब पगार के बजाय बहुत ही थोड़ी रकम देकर अधिक से अधिक काम करवाता रहा है। करनैल सिंह बताते हैं,
$60-$50 आवर के हिसाब से देना चाहिए था। पर डे हम 8 आवर काम करते थे, more than $300 बर्थडे पे भी $110।
न्यूयॉर्क शहर प्रशासन द्वारा विभिन्न सरकारी इमारतों और सड़कों की मरम्मत का काम निजी ठेकेदारों के जरिए भी कराया जाता है। और ऐसे ही एक ठेकेदार परेश शाह की KS कंपनी के साथ करनैल सिंह ने 2 साल कड़ी मेहनत वाला काम किया, लेकिन इस कंपनी द्वारा कानूनन जितना पैसा करनैल सिंह जैसे मजदूरों को प्रति घंटे के हिसाब से मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता था। करनैल सिंह बताते हैं कि वो मजबूरन काम करते रहते,
नहीं काम करने का भी वर्क परमिट नहीं, मेरे पास पेपर भी नहीं थे, मैं नहीं बोल सकता था। जिनके पास पेपर थे उनको वो चेक देते थे, उनके साथ जाते थे, एक आदमी चेक कैश करवा के सभी को बांट देते थे। लेकिन उन्होंने जब बंद ही कर दिया, बोलते पैसा है ही नहीं हमारे पास, अभी देंगे ही नहीं, 4 वीक का मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं दिया, नथिंग दे पे मी, उसके बाद हमने काम छोड़ा। हमने बोला उनको हम केस करेंगे, ये करेंगे, बोलते जो कुछ मर्जी करो, हमारे पास नहीं है कुछ।
न्यूयॉर्क के सिटी कंट्रोलर के दफ्तर ने इस कंपनी के बारे में मजदूरों को कम पगार दिए जाने की शिकायत के बाद कई महीनों की जांच पड़ताल के बाद मजदूरों को उनका वाजिब बकाया मेहनताना दिलवाया। परेश शाह और उसकी कंपनी पर प्रतिबंध के साथ साथ 36 मजदूरों को धोखा देकर कम पगार देने के लिए $170,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अब ये रकम मजदूरों में बांटी जाएगी। इनमें कर्नेल सिंह समेत कई भारतीय मूल के मजदूर भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क के सिटी कंट्रोलर स्कॉट स्ट्रिंगर कहते हैं कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये सुनिश्चित करें कि मजदूरों को ठेकेदार कानूनी तौर पर सही पगार दें।
A lot of people in this city go to work on major development projects.
शहर में बहुत से लोग हैं जो प्रशासन के विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और उनमें बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिन्हें उनके ठेकेदार सही दर पर पगार नहीं देते और ये गैर कानूनी है। हम ऐसे मामलों के पता लगने पर जांच करते हैं और मजदूरों को उनका हक दिलाते हैं। ये थे सिटी कंट्रोलर स्कॉट स्ट्रिंगर के शब्द। स्कॉट स्ट्रिंगर बताते हैं कि पिछले 3 साल में 35 ठेकेदारों को मजदूरों को कम पगार देने के जुर्म में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब तक ठेकेदारों से $80,00,000 का जुर्माना भी वसूला गया है जो वापस मजदूरों को दे दिया गया है। अब भी न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के पास ठेकेदारों से जुर्माने के तौर पर वसूली गई $50,00,000 की रकम पड़ी हुई है जो उन मजदूरों के पगार का पैसा है जो उन्हें ठेकेदारों ने नहीं दिया था। सिटी कंट्रोलर स्कॉट स्ट्रिंगर बताते हैं कि उनके कार्यालय ने भारत समेत कई देशों के करीब 1,000 मजदूरों की सूची बनाई है और उन देशों के कौंसलावास से भी संपर्क बनाकर उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो या तो वापस अपने देश चले गए हैं या फिर अमरीका से वापस भेजे जाने के डर से अपना पैसा लेने नहीं आ रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के राष्ट्रपति बने हैं तब से न्यूयॉर्क जैसे शहरों में लाखों की संख्या में गैरकानूनी तौर पर रह रहे लोगों में डर बढ़ गया है कि उन्हें अप्रवासन अधिकारी पकड़कर अमरीका से बाहर कर देंगे। और ऐसे माहौल में न्यूयॉर्क शहर में कानून का हवाला देने के साथ साथ इस मुद्दे पर राजनीति के तहत भी शहर का मौजूदा डेमोक्रेटिक प्रशासन इन गैरकानूनी मजदूरों की हिमायत में तेजी दिखा रहा है। इन मजदूरों के मामले में सिटी कंट्रोलर के कार्यालय से बार बार यह प्रचार किया जा रहा है कि किसी भी मजदूर से उसके अप्रवासन के दस्तावेजों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। सारा अमीन सिटी कंट्रोलर के कार्यालय में काम करती हैं और मजदूरों की पगार वापस दिलाने के काम से जुड़ी हैं।
एक तो उनकी इमिग्रेशन स्टेटस, उनको डर लगता है कि अगर वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनके पास पेपर्स नहीं है, ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, कि अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो इमिग्रेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। मगर हमारा ऑफिस बिल्कुल किसी की इमिग्रेशन स्टेटस को नहीं देखता। हम लोग कभी पूछेंगे नहीं आपसे कि आप सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड है या कोई पेपर्स हैं। इसी वजह से हम लोग नहीं पूछते ताकि वर्कर्स हमसे सामने आए और बात करें ना। दूसरी कुछ लोगों को डर लगता है क्योंकि छोटी छोटी कम्यूनिटीज़ होती हैं ना, तो उनको लगता है कि अगर वो कंप्लेन करें उनको दोबारा जॉब नहीं मिलेगी या उनकी जो अभी जॉब है वो उनको छोड़ देंगे, मतलब उनकी छुट्टी करवा देंगे। तो इसलिए हम लोग सबकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को बताते नहीं कि किसने कंप्लेंट फाइल किए।
लेकिन जो मजदूर हिम्मत करके अपना हक मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं उन्हें खुशी भी होती है। कर्नेल सिंह को $1.5-2 लाख तक बकाया रकम मिलने की उम्मीद है, वो इस बारे में खुश हैं।
मैं हैप्पी हूं, मिलेगा कुछ सभी।
सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो ये खुशी की खबर भारतीय मजदूरों के लिए जो रहते हैं न्यूयॉर्क में। और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी शिकवे शिकायतों का। आपकी चिट्ठियां लेकर के आए हैं फैसल मोहम्मद अली और इकबाल अहमद।
आपकी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल अहमद।
और मैं फैसल मोहम्मद अली।
सबसे पहले खत लेते हैं गणेश प्रसाद हुजदार से, जिन्होंने जमेरिया नेपाल से लिखा है हमें। सर्वप्रथम होली के शुभ अवसर पर बीबीसी हिंदी परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत और नेपाल के समस्त हिंदू आज होली के खुशनुमा रंग अबीर से सराबोर तो हैं ही, पाकिस्तान के हिंदू भी वहां होली के रंगों में खुश देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो तब हुई जब लखनऊ के नवाब भी बड़े हर्षोल्लास के साथ होली खेला करते थे। काश आज भी हम सब हिंदू और मुसलमान एक साथ होली खेलकर अपने शिकवे, गिले, शिकायतें सबको दूर कर सकें। क्या कहते हैं फैसल साहब आप?
देखिए, और ये बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले तो उनका शुक्रिया कि उन्होंने होली की मुबारकबाद दी। बीबीसी परिवार की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनके साथ। और हिंदू ही नहीं होली खेल रहे हैं, उसमें बड़ी तादाद में आज भी मुसलमान शामिल होते हैं। ये राजनीति और बाकी बातें दूसरी हैं। और जहाँ तक होली खेलने की साझा तहजीब है, वो सिर्फ नवाब नहीं, बुल्ले शाह ने तो पूरी यहाँ तक बात कही है कि होली खेलूंगी कह के बिस्मिल्लाह। तो होली की बहुत बहुत मुबारकबाद उनको।
अब अमित कुमार, जिन्होंने मेल के ज़रिए हमें یہ خط بھیجا ہے وہ لکھتے ہیں، میں بہت لمبے سمے سے آپ کا پاٹھک رہا ہوں، بہت شکریہ، پہلے آپ کے نیوز ہوا کرتے تھے، اب ویوز ہوا کرتے ہیں، وہ بھی بی جے پی ورودھی، پرواگرہ گرست ہو گئے ہیں، مانوتا وادی بنیے، سچے سیکولر بنیے، مسلم تشٹیکرن مسلم ہت ورودھی ہے، باپ رے باپ، امت کمار جی تو بہت ہی ناراض دکھتے ہیں۔
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امت صاحب ایسا ہے کہ شاید آپ نے ہمارے کچھ ہی حصوں کو پڑھا اور اس پر دھیان نہیں دیا، اب دیکھیے میں ہی منی پور گیا ہوا تھا ابھی کوریج کے لیے، تو میں نے وہاں بی جے پی کے پریسیڈنٹ کا انٹرویو کیا، کانگریس والوں نے نہیں دیا، تو ہم نے اس کو اپنے پیج پہ چلایا اور لوگوں نے پڑھا بھی، تو اب یہ اس طرح کا الزام مجھے لگتا ہے کہ امت صاحب شاید ہمارے پورے پنے کو اچھی طرح سے پڑھیں اور اپنے نظریے کو بدلیں، اور ان کا سجھاؤ کا ہمیشہ سواگت ہے۔
بالکل، آپ جتنی ہماری آلوچنا کرتے ہیں اس سے ہمیں اور اپنے پرسارن کو، اپنے کارکرموں کو، اپنے رپورٹوں کو اور بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ فضل احمد لکھتے ہیں کہ میں بی بی سی ہندی ریڈیو کا پروگرام آن لائن سننا چاہتا ہوں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو بہت سیدھا سا جواب ہے فضل صاحب کے، بی بی سی ہندی ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پر آئے جہاں پر ریڈیو کے سارے جو پرسارن ہیں صبح والے بھی اور شام والے بھی وہاں موجود رہتے ہیں، اور نہ صرف یہ موجود رہتے ہیں، آپ چوبیسوں گھنٹے اسے سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے تو آپ بی بی سی ہندی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے ذریعے بھی آپ ریڈیو کے کارکرم سن سکتے ہیں۔ اور آج چونکہ ہولی ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ڈھیر سارے خط ہیں، شبھ کامنائیں لوگ دے رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے بی بی سی پورے پریوار کو ہولی کی مبارکباد دی ہے، لیکن ایک میں موہن تھانوی جی نے ایک کویتا لکھ کر بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فیصل آپ پڑھیں اسے، دو چار لائن تو ضرور پڑھیں۔
اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، انہوں نے لکھا ہے، رنگ مسکان کے، رنگ خوشیوں کے، رنگ اپنے پن کے، رنگ جیون کے، رنگ سفلتا کے، رنگ یہ سب آپ کے، ہولی رے گھنی گھنی بدھایا، رام جی تھانے سگلا نے نروگا راکھے، کمائی دگنی چوگنی بڑھاوے، ٹابریا آپ سیوں بھی اونچا چڑھے، دیش رو مان بڑھاوے، مارواڑی میں لکھا ہے انہوں نے۔
تو موہن تھانوی کی اس کویتا کے ساتھ ہی میں اقبال احمد
اور میں فیصل محمد علی،
تو اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہمیشہ کی طرح کہ آپ اسی طرح ہمارے کارکرم سنتے رہیں اور ہمیں ڈھیر ساری چٹھیاں لکھتے رہیں۔ ہمارا پتہ ہے بی بی سی ہندی سیوا، پوسٹ باکس نمبر 3035، نئی دلی 110003، اور اگر آپ ہمیں میل کے ذریعے کچھ بھیجنا چاہیں تو ای میل آئی ڈی ہے bbchindi.letters@bbc.co.uk۔ نمسکار۔
تو اگر آپ نے اب تک چٹھی نہیں لکھی ہے تو اب ضرور لکھیے گا، اور آپ کو بتا دیں کہ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ نواب نے محرم کے دن ہولی منائی ہو، اگر نہیں سنا تو اس بارے میں کھما کیجیے گا، خبر ہے ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر، وہاں آئیے اور اسے پڑھیے اور دیکھیے کہ ایسا کب اور کیا ہوا تھا۔ فی الحال دن بھر میں سمے پورا ہو چکا ہے، تو آئیے چلتے چلتے پرمکھ سماچار ایک بار پھر سن لیتے ہیں۔
بی بی سی سماچار۔ گوا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی اگوائی میں نئی سرکار کا گٹھن ہوگا، منوہر پریکر کل مکھیہ منتری پد کی شپتھ لیں گے۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے کہا ہے کہ وہ یونائٹڈ کنگڈم سے آزادی کے لیے نئے سرے سے جنمت سنگرہ کرانے کے پکش میں ہے۔ صومالیہ کی پولیس کے مطابق راجدھانی موگادیشو میں ایک ہوٹل کے پاس ہوئے کار بم دھماکے میں کم سے کم 5 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی انیہ لوگ گھائل ہو گئے۔ سیریا کے سرکاری ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ان کے اور ورودھیوں کے بیچ بنی سہمتی کے بعد ہوم شہر سے ودروہی لڑاکوں کو باہر آنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس بیچ سیریا کے وپکشی گٹ کے پروکتا نے کہا ہے کہ وہ منگلوار سے قزاقستان میں شروع ہو رہی بات چیت میں حصہ نہیں لیں گے۔ اتر کوریا نے جنیوا میں سنیکت راشٹر کی اور سے کی جا رہی مانوادھیکار ریکارڈ کی سمیکشا کا بہشکار کر دیا ہے۔ نائجیریا کے راشٹرپتی محمد بہاری نے کام کاج سنبھال لیا ہے، وہ بیمار ہونے کی وجہ سے لمبی چھٹی پر تھے۔ بھارتی ریزرو بینک نے بینک اور اے ٹی ایم سے دھن نکالنے سے جڑی سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ ایتھوپیا کی راجدھانی ادیس ابابا میں ملبے کے ڈھیر میں دب کر مرنے والوں کی سنکھیا 60 تک پہنچ گئی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
پرمکھ سماچار سنایا واتسلیہ رائے نے اور آج اسٹوڈیو سنبھالا دیواشیش کمار نے۔ آپ سے کل صبح نمسکار بھارت میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک خبریں دیکھنی ہیں تو آئیے bbchindi.com پر۔ نکھل رنجن کو سبھی ساتھیوں سنگ دیجیے انمتی۔ नमस्कार।